नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बाद व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में श्री पुतिन का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। एक रिपोर्ट।
पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 बार मिल चुके हैं। वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संस्थागत संवाद तंत्र है। 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार $68 बिलियन से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दोनों नेताओं ने 2030 तक व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्री पुतिन ने भारत आने से पहले एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आसानी से दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं और भारत के लोगों को उन पर गर्व है। रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए आज ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 5.25% कर दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति में इस निर्णय की घोषणा की। इससे आवास, ऑटो और वाणिज्यिक सहित विभिन्न ऋण सस्ते होने की उम्मीद है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 में 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला शुरू होने के बाद ये सबसे निचला स्तर है। लोकसभा की कार्यवाही तमिलनाडु के मदुरई में एक मंदिर में दीप जलाने के विवाद पर डीएमके के सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद फिर शुरू हो गई है। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और इस मामले पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अब तक 1,51,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून बनने के बाद मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल शुरू किया था और संबंधित पक्षों को पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था।
जितने भी मुतावली के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावली के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज राज्य सरकारों पर स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग न करने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 64,000 करोड़ रूपये दिए थे, लेकिन उसमें से केवल 30,000 करोड़ रूपये ही खर्च किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की 18 से ज्यादा संपत्तियां, सावधि जमा, बैंक में जमा धन और गैर सूचीबद्ध निवेशों में शेयरधारिता, जिनकी कुल कीमत 1,120 करोड़ रुपए है, जब्त कर ली है। दिल्ली हवाई अड्डे से इंडिगो की घरेलू उड़ानें आज आधी रात तक रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के बयान के अनुसार अन्य सभी एयरलाइन का संचालन निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज चेन्नई में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।